सो हम लोग श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 13वां अध्याय 40वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। दमष्ट्रांक्र कोट्या भगवं स्तया धृता विराजते भूधरा भू सभूतरा यथा वनानि सरतो दता धृता मतन गजेन्द्रस्य सपत्र पत्मिनी। इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की, हे पृथ्वी के उठाने वाले, आपने जिस पृथ्वी को पर्वतों समेत उठाया है वह उसी तरह सुंदर लग रही है जिस तरह जल से बाहर आने वाले क्रुद्ध हाथी के द्वारा धारण की गई पत्तियों से युक्त एक कमलिनी। तात्पर्य, पृथ्वी लोक के भाग्य की सराहना इसलिए की गई है क्योंकि इसे भगवान ने विशेष रूप से धारण किया है। इसके सौंदर्य की प्रशंसा की जा रही है और इसकी तुलना उस कमल के फूल की सुंदरता से भी की जा रही है जो हाथी की सूंड पर स्थित है। चूंकि कमल का फूल पत्तियों समेत अत्यंत सुंदर लगता है, उसी तरह यह पृथ्वी अपने अनेक सुंदर पर्वतों समेत भगवान वराह की दाढ़ों पर शोभायमान हो रही थी। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वप्रांतिकं। वन्देहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदी गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सो ये चैप्टर का नाम है श्री भगवान वराह का प्राकट्य। सो बात चल रही थी कि ब्रह्मा जी के द्वारा जो है मनु का जन्म हुआ, उसकी पत्नी का जन्म हुआ, और मनु ने बोला कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो उन्होंने बोला, हे पृथ्वी के स्वामी, आप जाके प्रजा का पालन करो, प्रजा उत्पन्न करो और उसका पालन करो। तो मनु ने बोला, पृथ्वी है कहाँ पर? तो ब्रह्मा जी ने इधर उधर देखा तो पता चला पृथ्वी गायब है। तो हिरण्याक्ष ने वो पृथ्वी जो है वो गर्भोदक जो जल है उसके तलहटी में वो पृथ्वी फेंक दी थी। और ये सारी घटनाएं कहाँ पर हो रही हैं? ये सारी घटनाएं पृथ्वी पर नहीं हो रही, क्योंकि पृथ्वी तो तलहटी में है, गिरी हुई है। ये सारी घटनाएं पृथ्वी से बाहर जैसे स्पेस में अंतरिक्ष में हो रही हैं सारी बातें। और पृथ्वी जो है एक फुटबॉल की तरह उसको सब लोग देख रहे हैं, वो छोटी सी पृथ्वी गिरी हुई है। सो ब्रह्मा जी ने तुरंत भगवान की शरण ली और भगवान को प्रे किया कि आप प्लीज हमें इस विपत्ति से छुटकारा दिलाए। तो हालांकि ये सोचा जा सकता है कि ब्रह्मा जी भगवान से सेवा ले रहे हैं, अरे भाई खुद तो पहले थोड़ी मेहनत कर लेते, कोशिश तो करो बाहर निकालने की, ऐसा थोड़ी ना कि आप में शक्ति नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी ने सीधा भगवान को प्रे किया। तो क्यों भगवान को प्रे किया कि भगवान से क्यों सेवा ली? क्योंकि जो शुद्ध भक्त होते हैं अगर वो भगवान से प्रे करते हैं किसी कार्य को संपन्न करने के लिए, है ना, तो उससे भगवान का यश बढ़ता है ना। जैसे उत्तरा ने प्रे किया कि गर्भ की रक्षा करो, तो उससे भगवान का यश बढ़ा। नहीं, जब ब्रजवासी हैं वो भगवान से प्रे करते हैं कृष्ण कृष्ण महाबाहो, कृष्ण आप महाबाहो, आप बहुत बलवान हो, हमारी रक्षा करो। और कृष्ण रक्षा करते हैं तो कृष्ण का यश बढ़ जाता है। लोग कृष्ण की उस लीला के ऊपर अनंत काल तक चर्चा करेंगे और भगवान का यश बढ़ेगा। नहीं, जब इंद्र ने चारों तरफ संवर्तक बादल भेजे और बारिश गिरने लगी, एक एक बूंद हाथी के पांव जितनी बड़ी थी। सो सब लोगों ने क्या किया, सब लोगों ने कृष्ण के पास गए, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे कृष्ण हमारी रक्षा करो। तो भगवान ने गोवर्धन उठाया, तो उससे क्या हुआ, आज तक लोग भगवान की जय जयकार कर रहे हैं कि आपने गोवर्धन धारण किया था, है ना, आपने गोवर्धन धारण किया। आज तक लोग भगवान की इस लीला की प्रशंसा कर रहे हैं, यशोगान कर रहे हैं। तो शुद्ध भक्त अगर भगवान से प्रे करते हैं किसी कार्य को संपन्न करने के लिए, जैसे इस्कॉन में भी लोग भगवान को प्रे करते हैं। नहीं, तो भगवान को क्या प्रे करते हैं, जैसे किसी मंदिर का निर्माण होने, तो भगवान को प्रे करते हैं, हे कृष्ण यदि आप चाहो, ऐसे बोलते हैं ना, यदि आप चाहो तो ये मंदिर का निर्माण जो है आप शीघ्र संपन्न करो। आप लोग बोल रहे हो प्रेयर, आजकल बोलते हैं यहाँ पर हर मंगला आरती के बाद बोलते हैं ना। हाँ, इसे और देखो भगवान कितना अच्छा मंदिर बना रहे हैं, है ना, और जब ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा तो लोग देखकर हैरान हो जाएंगे, हाँ, कि एक पैसा भी नहीं था फिर भी भगवान ने सारे साधन भेजे, सारे भक्त भेजे, और भक्त वेट कर रहे हैं कि कब ये मंदिर बन जाए और पूरा जो टेंपल हॉल है भक्तों से भर जाएगा, ऐसा लगेगा कि बहुत छोटा मंदिर बना दिया। नहीं, तो ये सारी चीज़ें भगवान की कृपा से होती हैं और ऐसी प्रार्थनाएं करने में कोई हर्ज नहीं है, कुछ गलत नहीं है। गलत तब होता है जब हम अपने लिए कुछ मांगते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ मांगते हैं। सो आप कह सकते हो उत्तरा ने भी तो अपने बच्चे के लिए मांगा था, अगर हम भी मांग ले तो क्या हर्ष है। नहीं, ये बामन रूपा प्रभु में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कभी। सो उत्तरा इसलिए ये भगवान से प्रे कर रही है क्योंकि उसको पता है कि ये भगवान का शुद्ध भक्त गर्भ में है और आगे जाकर वो ऐसे कार्य करेगा कि भगवान की महिमा बढ़ेगी, है ना। और दूसरी बात यह है कि हमें जो महाजन है, जो वैष्णव है, वरिष्ठ वैष्णव है, जो शुद्ध भक्त हैं, हमें उनका अनुकरण नहीं करना, हमें उनका अनुसरण करना है। मतलब हमें उनकी नकल नहीं करनी, उनकी शिक्षाओं का पालन करना है, है ना। तो ये महत्वपूर्ण है ये बात जानना। सो ब्रह्मा जी ने प्रे किया, तो प्रे किया और उनकी नासिका से भगवान भराय प्रकट हो गए। और बाद में वर्णन आएगा कि जब भगवान वराह ने पृथ्वी निकाल ली बाहर, तो भगवान ने अपना श्याम रूप प्रदर्शित किए, तो सब लोग समझ गए ब्रह्मा जी, सनक सनातन आदि जो चार कुमार हैं और मरीचि इत्यादि जो ऋषि हैं, वो सब समझ गए कि ये स्वयं कृष्ण है। सो ये जो श्लोक बोल रहे हैं, श्लोक कौन बोल रहे हैं? ये श्लोक जो सारे साधु महात्मा ब्रह्मा जी के पुत्र ये सब ये श्लोक बोल रहे हैं। और उन्होंने भगवान की जब प्रशंसा करनी शुरू की तो उन्होंने भगवान के जो भगवान का शरीर है, भगवान का शरीर की उन्होंने तुलना विभिन्न जैसे वेदों से, यज्ञों से, मंत्रों से की। उन्होंने बताया कि जो भगवान का शरीर है दिव्य है, किसी भी स्थिति में भगवान का शरीर भौतिक नहीं है और ना ही किसी भौतिक स्थिति से प्रभावित होता है। तो ये प्रश्न उठ सकता है कि भगवान ने वराह रूप ही क्यों लिया, शुक्र रूप क्यों लिया भगवान ने? तो भगवान ने शुक्र रूप इसलिए लिया, हमारे आचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि क्योंकि जो पृथ्वी है वो धसी हुई थी गर्भोदक समुद्र में, चारों तरफ कीचड़ था, छुप गई थी, देखने से नजर नहीं आएगी, तो उसको सूंघ कर निकालना पड़ेगा। और जो शूकर है, शूकर सूंघ के अपना भोजन तलाश करता है, नहीं तो इसलिए क्योंकि पृथ्वी को सूंघ कर ढूंढना था और निकालना था कीचड़ में से, इसीलिए भगवान ने शूकर रूप लिया। शूकर रूप लिया का मतलब ऐसा नहीं है कि पहले शूकर रूप नहीं था। भगवान का जो वराह रूप है वो नित्य सनातन है। वो जम्बू द्वीप के उत्तरी भाग में सनातन रूप से विद्यमान है। हमारे दृष्टिगोचर अभी जाकर हुआ, तो हमारे दृष्टिगोचर अब हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले से भगवान का शुक्र रूप नहीं था, अभी भगवान कृष्ण ने गढ़ दिया, ऐसा नहीं है। ऐसा सोचना अच्छी बात नहीं है। ऐसा सोचना जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरी पीठ पर छुरा मारने के समान है, ये सोचना कि कुछ परिवर्तन हो गया, कोई नई चीज बन गई। सो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कुछ नई चीज नहीं बन रही, सब वैसा का वैसी है। भगवान के जितने स्वांश हैं वो सब पहले से ही मौजूद हैं। जैसे सूर्य, सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश हमेशा एक साथ हमेशा से विद्यमान है, उसी प्रकार भगवान, भगवान के स्वांश और भगवान के विभिन्नांश हमेशा से विद्यमान है। ऐसा नहीं है कोई चीज़ बाद में बन रही है, कोई चीज़ अभी बनी, कोई चीज़ खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान और भगवान की जितनी सामग्री है वो सब इटर्नल है, वो सब सनातन है। सो भगवान वराह जो है उन्होंने जब उसमें गर्भोदक समुद्र में डुबकी लगाई, हाँ, तो बहुत जोर से उसके अंदर कूदे वो, हाँ, तो बीच में से जैसे ऐसा लगा कि फट गया है वो, हाँ, और उसकी लहरें ऐसे उठी तो ऐसा लगा जैसे सूर्य दोनों बाहें ऊपर उठाकर भगवान से रक्षा की गुहार लगा रहा है ना, बड़ा होगा आपने। और वरादेव ने अपने खुरों से फटाफट पानी को काटा और क्षण के अंदर नीचे पहुंच गए, उन्होंने पृथ्वी को उठाया। और जैसे ही पृथ्वी को छुआ भगवान ने, पृथ्वी पुलकित हो गई, पृथ्वी को रोम हर्षण हो गया, और भगवान ने, भगवान वराह ने पृथ्वी को उठाया और बाहर निकले। तो जो साधु महात्मा है वो देखकर बोल रहे हैं कि कितनी सुंदर लग रही है पृथ्वी, पृथ्वी कितनी सुंदर लग रही है, कमलनी की तरह, पद्मनी की तरह पृथ्वी की शोभा बढ़ रही है ना। भागवत में भी बताया कि जब भगवान कृष्णा जब अपनी लीला, प्रकट लीला कर रहे थे भगवान, तो भगवान के जो चरण कमल हैं, भगवान के चरण कमल के चिन्ह जो हैं हर जगह रज पर छू रहे थे, अंकित हो रहे थे पृथ्वी पर। तो सारे ब्रजवासी कह रहे थे कि पृथ्वी की शोभा कितनी बढ़ गई है कि भगवान के चरण कमल पृथ्वी को छू रहे हैं। सिर्फ भगवान के चरण कमल छू लेने भर से पृथ्वी की शोभा असीमित मात्रा में बढ़ गई, नहीं? और बल्कि गोपियां जो हैं वो जब भगवान को ढूंढ रही थी, जब भगवान रासलीला में से अदृश्य हो गए थे नहीं, गोपियां ढूंढ रही थी, तो उन्होंने जानवरों से पूछा, पेड़ पौधों से पूछा, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने बोला एक ऐसा व्यक्ति है जिसको 100% पता होगा कि कृष्ण कहाँ है, कौन है वो व्यक्ति। हाँ, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसको, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं पता हो। हाँ, श्रीमती राधा रानी तो खुद ही ढूंढ रही थी प्रभु, श्रीमती राधा रानी तो खुद ही ढूंढ रही थी। तो पृथ्वी ऐसा ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनको पता है हमेशा कि भगवान कहाँ है। क्यों? क्योंकि भगवान कहीं भी रहेंगे पृथ्वी पर ही तो रहेंगे, नहीं? तो गोपियों ने दिमाग लगाया, उन्होंने बोला कि चलो इस पेड़ को नहीं पता भगवान यहाँ से निकल गए, उसको बेचारे को क्या पता कहाँ गए। तो एक हिरण को पूछा गोपियों ने कि कहाँ है कृष्णा, तो उसने इशारा किया कि चलो आओ मैं दिखाता हूँ। तो थोड़ी देर वो चले, सारे गोपियाँ उसके पीछे चल रही थी हिरण के, भाग गया हिरण। तो गोपियों ने सोचा कि वो डर के भाग गया है कि कभी कृष्ण उसकी क्लास ना लगा दें। अबे तूने को बताया जब मैं गायब होना चाह रहा था, तो तेरी क्या मजाल है बताने की, तुझे क्या जरूरत पड़ी थी बताने की, अपने काम से काम रख। तो कहे हिरण डर गया और हिरण भाग गया भगवान के सामने ले जाने से पहले। तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी को जरूर पता होगा क्योंकि भगवान कहीं भी रहेंगे पृथ्वी पर तो विराजमान है ही। तो फिर उन्होंने पृथ्वी से पूछा कि तुम कितनी सुंदर लग रही हो, देखो। पहले उन्होंने पृथ्वी की प्रशंसा की, नहीं? उन्होंने कहा कि देखो जब भगवान वरा ने तुम्हारा स्पर्श किया था तो तुम्हारी शोभा कितनी बढ़ गई थी, तुम कितनी पुलकित हो गई थी। हाँ, ये गोपियां जो है पृथ्वी को ये बात बोल रही है ना? और भगवान जिस चीज को भी छूते हैं, जिस चीज को भी छुएंगे भगवान, वो चीज सुंदर हो जाएगी। इस संसार में जो भी सुंदरता है, जो भी चीज कुछ अच्छी दिख रही है, वो भगवान की विभूति है, भगवान के स्पर्श के कारण है। अगर कोई व्यक्ति सुंदर है, कोई स्त्री सुंदर है, कोई वस्तु सुंदर है, वो इसलिए है क्योंकि भगवान का स्पर्श प्राप्त है ना। और भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में, यद यद विभूतिम विभूतिमत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एवा तद तद एवा गच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। कि तुम जान लो अर्जुन, तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक अंश मात्र से उद्भूत है ना। और कृष्ण कह रहे हैं अथवा बहु नैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुना विष्टभ्याहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशिष्ट ज्ञान की क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है? हाँ, मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। कोई भी वस्तु जो प्राप्य है, जो वांछित है, जो एक आप सोच सकते हो कि संपत्ति है, वो वास्तव में भगवान कृष्ण की शक्ति है। भगवान कृष्ण के स्पर्श के कारण वो वस्तु वांछित है। अगर पुरुषों में जो पौरुष है, पौरुष वो भी भगवान है। अगर जो पानी का जो टेस्ट है, रसो हम अपसु कौन्तेया, जो पानी का टेस्ट है वो भी कृष्ण है। तो ये बात अगर हम हमेशा याद रख पाए कि हर सुंदर वस्तु भगवान के स्पर्श के कारण है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे भगवान को याद रखना आसान हो जाएगा, है ना। हमने कोई भी वस्तु देखी, हमने सोचा कि अरे ये तो कितनी सुंदर है ये वस्तु, भगवान के स्पर्श के कारण है, नहीं तो फौरन हमें भगवान का स्मरण आएगा। अगर हम बोलेंगे पानी कितना टेस्टी है, हाँ, और कृष्ण पानी का स्वाद है, फौरन भगवान का स्मरण आएगा, नहीं। अगर हम अपनी चेतना को इस स्तर पे उठा लें कि हम हर वस्तु में भगवान को देख पाए, हर वस्तु में अगर हम भगवान को देख पाए, हर वस्तु की सुंदरता को भगवान से जोड़ पाए, तो भगवान का स्मरण करना बहुत आसान हो जाएगा, नहीं। ये इस श्लोक का मुख्य उद्देश्य है, ये समझना कि भगवान को स्मरण करने का सबसे सरल उपाय क्या है। सबसे सरल उपाय है, अगर कभी आप शीशे में अपने आप को देखो, आपको लगे आज तो मैं बहुत अच्छा लग रहा तो तुरंत ये सोचना चाहिए कि ये भगवान की स्पर्श के कारण है। भगवान अंडांतरस्त परमाणु चांतरस्तम, भगवान हर कण कण में विराजमान है। भगवान आत्मा तो हर हर दिन आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाती है, हर दिन आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाती है। जब हम सोते हैं तो आत्मा शरीर से निकल जाती है बाहर, लेकिन फिर भी शरीर खराब क्यों नहीं होता, क्योंकि भगवान उसमें विराजमान रहते हैं। जब आपकी नींद टूटती है, आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है, आप सोचते हो कि वो मैं तो सपने में वहाँ चला गया था, वहाँ चला गया था, एक्चुअली में आप लोग वहाँ होके आते हो। हमें अनुभव होता है ना कि हम यहाँ गए, वो किया, बादलों में चल रहे थे, नहीं। तो एक्चुअली में आत्मा उसमें शरीर से बाहर निकल कर वो सारे कार्य कर रही होती है, हमें अनुभूति होती है कि ऐसा सपने में किया था। तो उस दौरान जब आत्मा शरीर से बाहर निकल के चली जाती है, उस समय भगवान परमात्मा सुपर सोल उस समय शरीर की रक्षा करते हैं। और जब तक भगवान किसी शरीर में विराजमान रहते हैं, तब तक उस शरीर की सुंदरता बरकरार रहती है, और जैसे ही भगवान उस शरीर को त्यागते हैं, वैसे ही सुंदर से सुंदर लगने वाला शरीर भी एकदम से भयानक लगना शुरू हो जाता है ना। तो श्रीमद् भागवतम में भी एक प्रसंग आता है कि भगवान अगर कुरूप से कुरूप, खराब से खराब वस्तु को भी छुएंगे, तो उसको भी भगवान एकदम सुंदर बना देंगे। जैसे कुब्जा का उदाहरण है ना, भागवतम में आता है दशम स्कंद में, कि तीन स्थान से विकृत थी कुब्जा, कोई उसकी ओर देखना भी पसंद नहीं करता था, लेकिन उसने भगवान के शरीर पे जो है लेप लगाए सुगंधित, तो भगवान प्रसन्न हो गए। तो भगवान ने उसके टखनों पे पैर रखा और उसके जो है ठोड़ी, उसको ऐसे हाथ लगा के ऊपर उठाया, एकदम सुंदर स्त्री बन गई वो तो भगवान ने जैसे ही उसको छुआ, एकदम से सुंदर बन गई। भगवान ने सनातन गोस्वामी, जिनके पूरे शरीर से पस बह रही थी, नहीं बदबू आ रही थी, भगवान ने जैसे ही उनका आलिंगन किया, एकदम से सुंदर हो गए सनातन गोस्वामी, ने सारे शरीर का रोग कुरूपता खत्म हो गई, है ना। सो जहां भी हमें कोई भी सुंदर वस्तु अगर दिखाई दे रही है, हमें तुरंत भगवान का स्मरण करना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और जहाँ तक भगवान के वराह रूप का की बात है, तो चैतन्य महाप्रभु ने भी भगवान के जो अपने वराह रूप का प्रदर्शन किया था, है ना, आप सबने पढ़ा है। चैतन्य भागवत में भी वर्णन आता है कि एक बार चैतन्य महाप्रभु भगवान वराह की महिमा का एक श्लोक सुन रहे थे, तो बहुत ही उत्तेजित हो गए चैतन्य महाप्रभु और दौड़ के गए मुरारी गुप्त के घर और जोर जोर से बोल रहे थे शुकर शुकर शुकर। तो मुरारी गुप्त को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। तभी चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त के जो उसका जो ऑल्टर था, दरबार था, उसमें एक लोटा पड़ा हुआ था, उन्होंने वो देखा। तो चैतन्य महाप्रभु उस लोटे को देख के उनको पृथ्वी का स्मरण हो गया और चैतन्य महाप्रभु एकदम से चैतन्य महाप्रभु ने अपना वराह रूप प्रदर्शन किया। तो एक्चुअली में वराह रूप का प्रदर्शन किया चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु वास्तव में वराह बन गए, चार उनके खुर चैतन्य महाप्रभु के आ गए और जो उनके दशन है, जो उनकी दाढ़ है, दांत है, वो चैतन्य महाप्रभु की प्रकट हो गई और चैतन्य महाप्रभु ने उससे उस लोटे को उठाया पृथ्वी रूप में और एकदम कूद के उसके मुरारी गुप्त के कंधे पे चढ़ गए और दोनों ने खूब डांस किया। और चैतन्य महाप्रभु ने बोला मुरारी गुप्त को कि मेरा गुणगान करो, मेरा गुणगान करो, मेरी प्रशंसा करो। तो मुरारी गुप्त ने कहा, मैं आपकी प्रशंसा कैसे कर सकता हूँ, वेद भी फेल हैं आपकी प्रशंसा करने के लिए। वेदों को छोड़ो, जो अनंत शेष है वो हजारों मुखों से आपकी प्रशंसा करते आ रहे हैं अनंत काल से, वो भी नहीं कर पा रहे ठीक से, तो मैं एक क्षुद्र जीव, मैं कैसे कर सकता हूँ आपकी प्रशंसा। तो उनकी विनम्रता को देखकर जो चैतन्य महाप्रभु बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए, है ना। सो भगवान वराह का जो रूप है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही आदरणीय और दिव्य है, है ना। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान राम का शरीर तो बहुत सुंदर था, भगवान कृष्ण बहुत सुंदर थे, लेकिन चैतन्य, लेकिन जो वराह रूप इतना अच्छा नहीं लग रहा। भगवान का वराह, जब आप भगवान के वराह रूप के दर्शन कर पाओगे जब, तो आपकी एकदम से भगवान के वराह रूप में आपकी आसक्ति हो जाएगी, आपके मन में प्रेम आ जाएगा भगवान के वराह रूप के लिए, है ना। सो भगवान के जितने भी रूप हैं हमें उन सब की पूजा करनी चाहिए, लेकिन हमारा जो प्रेम है, हमारी जो आसक्ति है, वो हम सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण में आवेशित करें, है ना। और हमें गोपियों से इस भाव के बारे में पता चलता है कि गोपियाँ जब भगवान कृष्ण को ढूंढ रही थी तो भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप बनाकर आए, तो गोपियों ने प्रणाम किया और उनकी स्तुति की भगवान के चतुर्भुज रूप की और उनसे पूछा, आपने कृष्ण को देखा कि ये प्रश्न कोई इंटरेस्ट नहीं था उनको भगवान के चतुर्भुज रूप में। इस बात को समझाने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्ति, केवल कृष्ण भक्ति प्रदान करने के लिए नहीं आए थे। हाँ, कृष्ण भक्ति तो बहुत सारे लोग प्रदान कर रहे थे, कृष्ण भक्ति प्रदान करने के लिए बहुत भक्त माधवेंद्रपुरी, शिलाईश्वरपुरी इत्यादि बहुत सारे भक्त पहले से ही मौजूद थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु आए वो चीज़ प्रदान करने के लिए जो उनसे पहले कभी किसी ने प्रदान नहीं की थी। चैतन्य महाप्रभु केवल कृष्ण भक्ति प्रदान करने नहीं आए थे, चैतन्य महाप्रभु आए थे माधुर्योज्वल रस प्रदान करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु आए थे गोपी भाव में भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए, है ना। सो हमें अपना लक्ष्य हमेशा पता होना चाहिए, हमें दो चीज़ें हमेशा पता होनी चाहिए, उससे कभी कन्फ्यूजन नहीं होती। पहली चीज़ कि हमारा लक्ष्य क्या है और दूसरी चीज़ है कि हम अभी कहाँ मौजूद हैं, नहीं। हमें हमारा लक्ष्य पता होना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु जिस माधुर्य और रस को प्रदान करने आए थे, हमें उस रस की अनुभूति करनी है, हमें उस स्तर तक उठना है भगवत कृपा से जहाँ पर हम भगवान कृष्ण की सेवा में लगी गोपियों की सेवा में लगी, गोपियों की सेवा में हम लोग अपने आप को निवेशित कर सकें, है ना। और हमें साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि हमारी अभी करंट पोजीशन क्या है, है ना। अगर हमें हमारी वास्तविक स्थिति अभी जो है अगर हमें पता नहीं होगी, अगर हमें अपने बारे में गलत फहमी होगी, तो हम ठीक से भक्ति नहीं कर पाएंगे और कुछ ना कुछ नुकसान कर बैठेंगे, है ना। इसीलिए भक्ति नोट ठाकुर ने कहा, अधिकार ना लभिया सिद्ध दे भावे विपर्या जन्म बुद्धि शक्ति रभावे, कि अगर आपके पास अधिकार नहीं है और आप सोचते हो कि मुझे तो सब पता चल गया, मुझे तो सिद्धि प्राप्त हो गई, और उस तरह से अगर हम व्यवहार करना शुरू करेंगे तो भक्तिनोद ठाकुर हमें चेतावनी दे रहे हैं, विपर्या जन्म बुद्धि, हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, हम भगवान से दूर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उस स्तर पर व्यवहार तो कर रहे हैं लेकिन शक्ति का अभाव है। अगर शक्ति का अभाव है और हम वहाँ वैसा व्यवहार करेंगे तो हम भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति ऑफेंसेस करेंगे, अपराध करेंगे, तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, भक्ति से हम दूर चले जाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दो बातों को हमेशा याद रखना, क्योंकि अगर गोल ही पता नहीं होगा तो उसकी तरफ कदम कैसे बढ़ाएंगे, नहीं? कदम बढ़ाने के लिए गोल पता होना चाहिए, नहीं? सो हमारा जो गोल है, जो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है, वो छोटी मोटी इच्छा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा बहुत महान है, बहुत बड़ी है, और चैतन्य महाप्रभु ये दिखा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने वराह रूप बनाकर, नरसिंह रूप प्रदर्शित करकर, षटभुज रूप प्रदर्शित करके, चैतन्य महाप्रभु ने राम, भगवान राम का रूप चैतन्य महाप्रभु ने प्रदर्शित करके यह संदेश दिया है कि अगर हम भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु की अगर हम उपासना करेंगे तो हम भगवान के सभी स्वामशों की उपासना उसमें सम्मिलित है, है ना। हमें अलग से उपासना करने की आवश्यकता नहीं है, है ना। कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत है। अगर हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो देवी देवताओं की बात तो दूर है कि दुर्गा जी प्रसन्न हो जाएंगी, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाएंगे, वो तो दूर की बात है। भगवान के सारे जितने भी स्वांश हैं, भगवान के जितने भी विस्तार हैं, वो भी सभी प्रसन्न हो जाएंगे, उनकी भी अलग से उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। हम सबको प्रणाम करते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य केवल और केवल भगवान कृष्ण अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना है, उनके चरणों में अनुराग उत्पन्न करना है। इससे नीचे हमें और किसी से कुछ सरोकार नहीं है, ठीक है। हरे कृष्ण।